मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, अब आपको मुगल चित्रकला के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एलपी शर्मा की बुक में संकलित है। चित्रकला। हिंदू काल में भारत में चित्रकला में बहुत उन्नति हुई थी तथा हिंदू और बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार होने से उसने एशिया के विभिन्न देशों की चित्रकला को भी प्रभावित किया था, परंतु बाद के समय में इसकी प्रगति संभव न हो सकी थी तथा मुसलमान सुल्तानों के समय में भी यह स्थिति रही। मुगल बादशाहों ने चित्रकला को पुनर्जीवित किया और एक बार फिर उसे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा दिया। मुगल चित्रकला का जो स्वरूप बना वह फारस, ईरान और भारतीय चित्रकला का मिश्रित स्वरूप था। मंगोलिया और चीन की चित्रकला को पहली बार फारस के मुसलमान शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, अन्यथा इस्लाम धर्म में चित्रकला का निषेध होने के कारण मुसलमान शासक इसको प्रोत्साहन नहीं देते थे। धीरे धीरे फारस ने अपनी चित्रकला को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर लिया और एक स्वतंत्र फारसी चित्रकला का निर्माण किया। बाबर और हुमायूं का इसी फारसी चित्रकला से संपर्क हुआ और उन्होंने उसे भारत में लाने का प्रयत्न किया। फारस का प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद, कोष्टक में पूर्व का रैफेल, संभवतः बाबर के समय भारत आया था, क्योंकि तुझके बाबरी में एकमात्र चित्रकार बिहजाद का नाम ही मिलता है। इसे बाबर ने अग्रणी चित्रकार कहा है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली को अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। अकबर ने चित्रकला की प्रगति करने में विदेशी कलाकारों की सहायता ली, परंतु वह इसी से संतुष्ट न रह सका। उसने भारतीयों को प्रोत्साहन दिया और उसके दरबार में अनेक कलाकारों का संरक्षण प्राप्त हुआ। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुस समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। इससे फारसी और भारतीय कला का मिश्रण हुआ तथा उस शैली का निर्माण हुआ जिसे मुगल चित्रकला के शैली के नाम से पुकारा गया है। धीरे धीरे यह शैली फारस की कला के प्रभाव से मुक्त होती गई और उस पर भारतीय प्रभाव अधिक होता गया। इस कारण मुगल चित्रकला का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया, जिसके कारण यह कहा गया है कि अकबर ने राष्ट्रीय चित्रकला शैली का निर्माण किया। जहांगीर के समय में वह यह कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई। शाहजहां ने भी इसे संरक्षण दिया, परंतु उसकी रुचि स्थापत्य कला में अधिक थी। औरंगजेब ने चित्रकला को धर्म के विरुद्ध मानकर दरबार से हटा दिया और अनेक चित्र नष्ट कर दिए। उत्तरकालीन मुगल बादशाह इसी कला को प्रोत्साहन देने की स्थिति में नहीं थे और चित्रकला मुगल दरबार में संरक्षण ना पा सकी, परंतु उस समय तक प्रांतों में चित्रकला का विकास हो गया था और विभिन्न हिंदू राजाओं और मुसलमान सूबेदार अथवा स्वतंत्र शासकों के संरक्षण में चित्रकला पनपती रही। विभिन्न शैलियों का निर्माण हुआ और चित्रकला को भारत में स्थापित्व प्राप्त हो गया। बाबर और हुमायूं को चित्रकला में रुचि थी। वे इस विषय में इस्लाम के निषेध को स्वीकार करने के लिए तैयार ना थे। हुमायूं जब फारस गया तो वह हिरात के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद के शिष्य ख्वाजा अबुल समद और मीर सैयद अली के संपर्क में आया और उसे उन्होंने अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। अब्दुस समद ने जो कृतियाँ तैयार की उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है। हुमायूं जब काबुल में था तब वह दोनों उसके पास पहुंच गए थे। हुमायूं और अकबर दोनों ने ख्वाजा समद से चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की। जब अकबर बादशाह बना तो उसने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। उसने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग खोल दिया। पुस्तकों के लिए ही उसने नहीं बल्कि फतेहपुर सिकरी के महलों की दीवारें पर भी उसने चित्र बनाने की आज्ञा दी। उसने चीन और फारस के विभिन्न कलाकारों को दरबार में आमंत्रित किया, अनेक भारतीयों को कला की शिक्षा की सुविधा प्रदान की, उनको संरक्षण दिया तथा प्रत्येक की रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया। अकबर के इन प्रयत्नों से सैकड़ों कलाकारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, अनेक चित्रों का निर्माण हुआ, मुगल चित्रकला का निर्माण हुआ और एक राष्ट्रीय चित्रकला शैली का विकास हुआ। अकबर के दरबार में प्रायः 100 अच्छे चित्रकार थे, जिनमें से 17 को दरबार में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इनमें विदेशी फारसी चित्रकार भी थे, परंतु हिंदी चित्रकारों की संख्या अधिक थी। फारसी चित्रकारों में अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फर्रुख बेग, जमशेद आदि मुख्य थे और हिंदू पत्र चित्रकारों में दसवंत, बसावन, श्यावलदास, ताराचंद, जगन्नाथ, लाल मुकुंद, हरिवंश आदि प्रमुख माने जाते थे। इस प्रकार अकबर ने मुगल चित्रकला शैली को भारत में स्थापित किया, उसकी प्रगति की और उसकी उन्नति के लिए मार्ग खोल दिया। जहांगीर चित्रकला का शौकीन और पारखी दोनों ही था। उसके समय में मुगल चित्रकला अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई। जहांगीर ने अपने बागीचे में एक चित्रकला कक्ष का निर्माण कराया था। विभिन्न महलों में भी उसी प्रकार के कला कक्ष रहे होंगे, यह माना जा सकता है। जहांगीर के समय में चित्रकला की उन्नति का एक कारण कलाकारों का संरक्षण प्रदान करना था, तो दूसरी कारण उसकी कला के प्रति रुचि और उसका स्वयं कला का अच्छा ज्ञान होना था। अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में उसने लिखा है, कला में मेरी रुचि और ज्ञान इस सीमा तक पहुंच गया है कि यदि मेरे सम्मुख किसी भी मृत अथवा जीवित चित्रकार की कलाकृति प्रस्तुत की जाती है और मुझे इस चित्रकार का नाम नहीं बताया जाता है, तो मैं तुरंत बता देता हूं कि यह अमुक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। यदि एक ही चित्र में विभिन्न कलाकारों के द्वारा विभिन्न आकृतियां बनाई गई हैं, तो मैं यह बता सकता हूं कि अमुक आकृति अमुक चित्रकार ने बनाई है। यदि एक चित्रकार ने चेहरा बनाया हो और उस चेहरे में आंखें और भौहें किसी दूसरे चित्रकार ने बनाई हो, तो मैं यह बता सकता हूं कि अमुक चित्रकार ने मूल चेहरा और अमुक चित्रकार ने आंखें और भौहें बनाई हैं। जहांगीर के इस कथन को यदि अतिशयोक्ति भी मान लिया जाए, तब भी यह उसकी रुचि का प्रतीक है। अच्छे से अच्छे चित्रकार जहांगीर के दरबार में एकत्रित थे, जिन्होंने अकबर के समय में आरंभ किए गए कार्य को पूर्णता प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। फारूख बेग, जिसने अकबर के समय में मुगल चित्रणशाला में प्रवेश किया था, जहांगीर के समय अपने जहांगीर के समय उसने कोष्टक में फारूख बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। अबुल हसन को नादिर उज जमात और मसूर को नादिर उज असर की उपाधि दी गई। अगा रजा, मुहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, बिशनदास, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन आदि उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां की चित्रकला की तुलना में स्थापत्य कला का अधिक शौक था, परंतु उसने भी चित्रकला को संरक्षण दिया। उसके समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी, परंतु रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। फकीरुल्लाह, मीर हासिम, अनूप चित्रा आदि उसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। उसके समय में चित्रकारों की संख्या कम हो गई थी। जहांगीर की तुलना में शाहजहां के समय में चित्रकला की अवनति हुई। औरंगजेब ने चित्रकला का विरोध किया, उसने अनेक स्थानों के चित्र को नष्ट करा दिया। इस कारण चित्रकार मुगल दरबार से हटकर विभिन्न प्रांतों में फैल गए। इससे चित्रकला की हानि हुई और लाभ भी। बादशाहों के संरक्षण के अभाव में उसकी प्रगति में बाधा पड़ी, परंतु प्रांतीय शासकों के संरक्षण में एक अन्य दृष्टि से उसे लाभ हुआ। प्रांतीय कला के रूप में चित्रकला के विभिन्न स्वरूप हो गए और चित्रकला जनजीवन के अधिक निकट हो गई। बादशाह फर्रुखशियर और बादशाह मोहम्मद शाह ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया। परंतु उस समय मुगल बादशाहों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे इस पर अधिक धन व्यय कर पाते। इस कारण मुगल चित्रकला का पतन हो गया। 18वीं सदी के अंत तक उस पर यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा, जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। मुगल चित्रकला अपने मूल पृथक रूप से हो गई। मुगल चित्रकला ने एक समय में बहुत उन्नतिशील स्थान प्राप्त किया और भारतीय चित्रकला के इतिहास में उसका स्थान गौरवपूर्ण है। इस काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ था। बादशाहों और अमीरों की आकृतियां, कोष्टक में पोर्ट्रेट्स, दरबार और शिकार के दृश्य, पशु पक्षियों की आकृतियां, बाग बगीचे, फल फूल पेड़ पत्तियां आदि के चित्रण आदि सभी इसमें शामिल थे। चित्रकारों ने आकृतियों के निर्माण में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। मुगल बादशाहों ने विभिन्न मुद्राओं में स्वयं के चित्र बनवाए और मुगल सरदारों ने भी ऐसा किया। स्त्रियों की आकृतियां संभवतया पर्दा प्रथा के कारण मूल में प्रस्तुत नहीं हो सकी थी, परंतु पुरुषों की आकृतियां पूर्णतया मूल में थी। इस प्रकार विभिन्न दृश्यों, पशु पक्षियों, फूलों बाग आदि को भी चित्रकार सामने बैठकर बनाते थे। मुगल चित्रकारों से आशा की गई थी कि वे जो सामने देखें उसी को बनाएं। इसी कारण उनके चित्रों में सजीवता एवं यथार्थता थी। मुस्लिम धार्मिक कथाओं के चित्रों को बनाने में चित्रकारों ने संकोच किया, परंतु हिंदू पौराणिक कथाओं और ईसाई धर्म की कहानियों को चित्रों में प्रस्तुत किया गया था। बड़े व्यक्तियों को, जीवनियों को भी चित्रों द्वारा प्रस्तुत करने का कार्य मुगल चित्रकारों ने किया। हमजाहनामा, बाबरनामा, तिमूरनामा, रज्जानामा, शाहनामा, लीलावती, लैला मजनू, अकबरनामा आदि को सफलतापूर्वक चित्र द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया। वस्तुतः मुगल चित्रकला का आरंभ पांडुलिपियों पर लघु चित्र बनाने से हुआ। हमजाहनामा फारसी और हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों से संबंधित अर्ध पौराणिक ग्रंथ है। अकबर ने सर्वप्रथम इस पुस्तक को ही चित्रों के रूप में तैयार करने की आज्ञा दी थी। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त पांडुलिपियों में बने हुए लघु चित्र अर्थात हाशिया चित्र मुगल चित्रकला शैली के उत्कृष्ट नमूने माने गए। जहांगीर के शासनकाल में हाशिया चित्रण का कला हाशिया फोरी एक बार कन्फर्मेशन के लिए हाशिया चित्रण का विकास कला की पृथक शाखा के रूप में हो गया और उसमें अलंकारिक आकारों के अतिरिक्त दृश्यों, पशु पक्षियों, मानव आकृतियों, पुष्पों, वृक्षों आदि के चित्रण को भी स्थान प्राप्त हो गया। शाहजहां के शासनकाल में इस हाशिया चित्रण कला का और अधिक विकास हुआ। अकबर ने छवि चित्र बनाने के भी आदेश दिए, जिसके कारण स्वयं अकबर के उसके विभिन्न अमीरों के उत्सवों आदि के बड़े बड़े चित्र बनने आरंभ हुए। बाद के काल में तो पांडुलिपियों पर चित्र बनाने की परंपरा प्रायः लुप्त हो गई। उनका स्थान व्यक्तियों के छवि चित्रों, प्रकृति दरबार, शिकार आदि के दृश्यों ने ले लिया। शानदार वस्त्र पहने हुए बादशाह और दरबारी, कीमती कालीन बिछे हुए कमरे, शराब पीती और पीती हुई स्त्रियां, धार्मिक साधना में लीन संत और फकीर शिकार करते हुए अमीर, पारस्परिक युद्ध में लगे हुए पशु आदि विभिन्न दृश्यों को दर्शाते हुए हजारों चित्र इस समय में तैयार किए गए, जिनकी प्रशंसा सभी के द्वारा की गई। पुस्तकों पर चित्र बनाना सुंदर लेखन शैली भी इसकी अपनी विशेषता रही। अकबर के समय में प्रगति करती हुई मुगल चित्रकला धीरे धीरे अपने रंग के मिश्रण और अनुपात की दुर्बलता को दूर करती गई और उसने चित्रकला के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफलता पाई। बाद के समय में मुगल चित्रकला शैली पर कुछ प्रभाव यूरोपीय चित्रकला का भी आया। अकबर के दरबार में ईसाई पादरी आने आरंभ हुए। उन्होंने अन्य वस्तुओं के साथ बादशाह को यूरोप के बने चित्र भी भेंट स्वरूप दिए, जिनकी प्रशंसा हुई। इन चित्रों की अपनी कुछ पृथक विशेषता थी। जिससे भारतीय चित्रकार प्रभावित हुए और अपने चित्रों में यूरोपीय चित्रों की कला को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण मुगल शैली कुछ मात्रा में यूरोपीय चित्रकला शैली से भी प्रभावित हुई। मुगल चित्रकला के नमूने बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश में उपलब्ध हैं, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम, सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता, अमेरिका और यूरोप के विभिन्न म्यूजियम और संग्रहालय आदि में मुगल चित्रकला की एक दुर्बलता अवश्य थी, जिसमें साधारण जनजीवन को चित्रित करने का प्रयत्न नहीं किया गया था। वह मुख्यतया दरबार और बादशाहों के निकट रही, इस कारण जनजीवन का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार से मुगल चित्रकला श्रेष्ठ मानी जाती है। मुगल काल में दक्षिण भारत में भी चित्रकला का विकास हुआ, उसे मुगल चित्रकला ने प्रभावित किया। यद्यपि कुछ अन्य दृष्टियों से वहां की कलाकृतियां मुगल कलाकृतियों से भिन्न थी, दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के शासकों ने भी अपने दरबारों में चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। यह कहना उचित नहीं है कि इनमें से प्रत्येक राज्य में पृथक चित्रकला शैली का विकास हुआ। यद्यपि थोड़ा बहुत अंतर इन स्थानों को शैलियों में रहा, इस कारण इन राज्यों को शैली को मिलाकर दक्षिण भारत की मुगलकालीन शैली कहना उचित है, तथा यह भी स्वीकार करना ठीक है कि कुछ सीमा तक मुगल चित्रकला शैली ने दक्षिण भारत की समकालीन चित्रकला को भी प्रभावित किया था। दक्षिण भारत में बने हुए चित्रों में भारतीय इतिहास संशोधक मंडल पूना में प्राप्त तारीख हुसैन शाही की अपूर्ण पांडुलिपि पर बने हुए चित्र कुछ विचित्र ही हैं। इसी प्रकार एक अन्य ग्रंथ नुजुम उल उल्म में विभिन्न आकार के प्रायः 876 चित्र बनाए गए थे, जो अब उपलब्ध हो चुके हैं। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय तथा उसके एक मंत्री का एक चित्र भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में उपलब्ध है। ये चित्र तो उदाहरण स्वरूप हैं, अन्यथा मुगलकालीन दक्षिणी चित्रकला शैली के अंतर्गत तैयार किए गए अनेक चित्र विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं।